देखिए, जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो आईसिस का तकरीबन ना के बराबर यहाँ से कोई भी आप कह सकते हैं फुटप्रिंट या इन्फ्लुएंस है। जो हो रहा है वो ये है कि जो मौजूदा संगठन है आतंकवादी संगठन, खासकर इंडियन मुजाहिदीन और सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के जो बचे कुछ अंसर हैं, वो अपने आप को रीब्रांड करके आईसिस के परचम के तले प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी लोग भारत से 2008 के बाद भाग के पाकिस्तान में इन्होंने शरण ले ली थी, और वहां पे इंडियन मुजाहिदीन सिमी का जो संगठन था वो तीन भाग में स्प्लिट हो गया। उसमें से एक जो था उसने अपने आप को अंसरुल तौहीद कहा और उसने अपने आप को आईसिस से एक एलिजेंस, अपना प्लेज, अपनी बैत आईसिस की को दे दी थी। तो ज्यादातर जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जो सस्पिशन में आ रहे हैं वो इस अंसरुल तौहीद फैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये ज्यादा रीब्रांडिंग की बात है। अगर आप एक्चुअल इंसिडेंट्स की बात कीजिए तो भारत से सिर्फ 23 लोग इराक सीरिया गए हैं आईसिस से जुड़ने के लिए। तकरीबन आप कह सकते हैं 30 लोग के करीब अरेस्ट हुए हैं आईसिस एक्टिविटी से जुड़े हुए जो थे, और 30 लोग ऐसे हैं जो इराक सीरिया से जाने से रोके गए हैं क्योंकि वो आईसिस से जुड़ने के लिए जाने जा रहे थे, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, वापस अपने फैमिलीज के पास लेके गए, उनको काउंसिल किया और एक सॉफ्ट अप्रोच उनकी तरफ लिया गया था। बाकी तकरीबन 35 ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से डिपोर्ट होके वापस भेजे गए हैं भारत, क्योंकि उनके कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज थे जो आईसिस रिलेटेड थे। ये है टोटल एक्चुअल इम्प्रिंट इतने बड़े देश में। तो मैं इसे ना के बराबर समझता हूँ, और मैं पूरा जो ये आईसिस का जिक्र हो रहा है इसमें कोई बहुत ज्यादा संपर्क ऑपरेशनल कंट्रोल या ऑपरेशनल रिसोर्स फ्लोज नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि आईसिस और इन अंसरों में कोई एक ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इनकी बढ़ी हो एज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग द आईसिस। तो एक बहुत ही मार्जिनल इंपैक्ट है, अगर कोई भी इंपैक्ट माना जाए आईसिस का।
जी सानी जी, अगर कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारत में पिछले कई सालों से ऐसा कोई बहुत मेजर हमला नहीं हुआ है, हुए हैं हमले लेकिन बहुत मेजर, बहुत बड़े स्केल पर नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में आज जो थ्रेट परसेप्शन है आतंकवादी हमलों का वो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं है, खतरा है लेकिन खुफिया एजेंसीज अच्छा काम कर रही है भारत में?
देखिए, खतरा तो बेशक रहता है क्योंकि आतंकवाद के लिए आपको कोई बहुत बड़ा रिसोर्स बेस नहीं चाहिए, दो या तीन आदमी भी काफी होते हैं अगर उनमें वो कैपेसिटी हो एक्सप्लोसिव या वेपन्स अक्वायर करने की और इस्तेमाल करने की, तो वो भी काफी नुकसान कर सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं ऐसे कि हम बिल्कुल अपने आप संतुष्ट बैठ जाए कि अब तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेंड्स को देखिए तो खतरा आज के दिन पिछले 20 साल 25 साल से कम है, और महज खतरे की बात नहीं है, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन देखिए, जो आप कह सकते हैं कि टोटल फेटेलिटीज जो हैं या इंसिडेंट्स हैं वो इतने कम हो गए हैं पिछले दशकों में कि मैं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी अच्छा काम किया है।
मेरा आखिरी सवाल यही था सानी जी कि अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो एक तरह से अभी इस्तांबुल में हमला हुआ, ब्रसल्स में हुआ, उससे पहले कई जगहों पर हमले हुए हैं, तो क्या उसके मद्देनजर फिर भी भारत में उस संदर्भ में एक खतरा है, वल्नरेबल सिचुएशन है, ठिकाने हैं, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, हर जगह का थ्रेट परसेप्शन अलग होता है?
हर जगह का थ्रेट परसेप्शन अलग होता है, हर जगह में जो आपके टेररिस्ट हैं उनकी कैपेसिटी और होती हैं, और जो थ्रेट परसेप्शन है, एक्चुअल थ्रेट किसी जगह पे जो मैनिफेस्ट होता है वो लोकल कैपेसिटी से जुड़ा होता है। ब्रसेल्स में क्या हुआ उससे भारत में जो आतंकवादी संगठन है उनको कोई नई कैपेसिटी नहीं मिल जाती, یا عراق سیریا میں اگر ایک خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت میں ایک دم سے اسلحہ بڑھ جائیں گے, ایکسپلوسیوز بڑھ جائیں گے, ٹرینڈ کارڈرز ابھر آئیں گے. بھارت میں دراصل ٹیررسٹ کیپیسٹیز کیا ہیں اور یہ کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سال سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے, اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ان کی کوششیں نہیں تھیں. بڑا حادثہ اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ ان کی کیپیسٹیز نہیں ہے, یہ کیپیسٹیز نیوٹرلائز کر دی گئی ہیں. تو ایک دم سے کیونکہ برسلز میں اٹیک ہوا, پیرس میں اٹیک ہوا, کہیں اور اٹیک ہوا, اس سے انڈین کیپیسٹیز نہیں ایک دم سے بدل جائیں گی. باقی آپ بات کرتی ہیں ولنربلٹیز کی, تو ولنربلٹیز بھارت کی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے فورسز بہت, ان کی تعداد کم ہے, ان کی کیپبلٹیز اور کیپیسٹیز پہ بہت لمیٹیشنز ہیں, ٹیکنیکل ٹیکنالوجیکل لمیٹیشنز ہیں. سافٹ ٹارگیٹ اٹیک تو کوئی بھی نہیں تقریباً روک سکتا, تو ولنربلٹیز برقرار ہیں. لیکن جو ہمارے یہ آتنکوادی سنگٹھن ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں, ان کی کیپبلٹیز اور کیپیسٹیز بہت حد تک کے ایروڈ کر دی گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے بھارت میں حادثے کم ہو رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے, لیکن ٹرینڈ جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیگریڈڈ گروپس ہیں اور ان کی کیپبلٹی اس سطر پہ نہیں ہے جو 10 سال یا 15 سال پہلے تھی.